आज हमारे बीच योगेश्वर बाबा के प्रखर योगी आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी हमारे बीच हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप देश मध्य नगरी सेंट्रल नगरी जो संतरों के लिए फेमस है नागपुर, उस नगरी से निकले हैं। ईश्वर के आप अनमोल रतन हैं। जैसे संतरों में रस होता है, ऐसे आपकी कमेंट्री भी रस भरी हुई होती है, अनुभूति के साथ कराते हैं। आपने नागपुर से एमएससी की, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट के साथ। उसके बाद बाबा का ज्ञान लिया और 1976 में आप मधुबन में आकर आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप तीनों ही कैंपस की जो टोली किचन को बखूबी से संभालते हैं। आप ब्राह्मणों को क्या चाहिए? टोली, बोली और दृष्टि। तो विश्व के पांचों महाद्वीप के लगभग 90 देशों में आप सेवाओं के उद्देश्य से भ्रमण कर चुके हैं। आप यूथ विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत ही प्रतिभावान हैं, निरहंकारी भी हैं और सरलचित भी हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और युवा प्रभाग के भी सेवाएं संभालते हैं। तो आज भाई जी से हम सुनेंगे, यूं ही दिल पर कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी जंग है उसे जारी रखिए। तो आज भाई जी से सुनेंगे कर्म योगी जीवन खुश नुमह जीवन कैसे बने, उस पर हमारे आदरणीय भाई जी प्रकाश डालेंगे। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी।
ओम शांति। कर्म योगी जीवन खुशनुमा जीवन। हम सभी ब्राह्मण बच्चों का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना, और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्म योगी बनना परम आवश्यक है। जब तक कर्म योगी नहीं बनते हैं तब तक कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग साथ साथ होना। कर्म अलग हो योग अलग हो ऐसे नहीं, लेकिन दोनों साथ साथ होना। क्योंकि जब हम योग में रहकर कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों में दिव्यता आती है, और जब हम बाबा की याद में कर्म करते हैं तो हमारे कर्म यादगार बन जाते हैं। बाबा ने मुरली में कहा है, मेरे बहादुर बच्चे वो हैं जो कर्म के साथ योगाभ्यास करने की क्षमता रखते हैं। कई समझते हैं जो हम हाथों से कर्म करते हैं वही कर्म है, लेकिन जो भी हमारी सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं उनको कर्म करते हैं, तो ऐसे तो हम निरंतर कर्म करते रहते हैं, इसलिए हमें बाबा को भी निरंतर याद करना होगा। आंखों से देखना ये भी कर्म है, मन से सोचना ये भी कर्म है, कानों से सुनना ये भी कर्म है। तो सारे दिन भर में हम कर्म करते ही रहते हैं। अभी कर्म योगी बनने की विधि क्या है? सबसे पहले हमें ये सोचना होगा, कर्म योगी अर्थात डबल फोर्स से काम करना। एक तो आत्मा का फोर्स है और बाबा की याद में करने से परमात्म शक्तियों का भी हमें सहयोग मिलता है। जब हम डबल फोर्स से कार्य करते हैं तो उसमें सफलता हमें निश्चित मिलती है। जिस कार्य में भगवान का साथ हो उस कार्य में सफलता न मिले, ये हो नहीं सकता है। इसलिए कर्म योगी बनने की विधि को जानना जरूरी है। पहली विधि है हाथों से या कर्मेंद्रियों से कर्म करना और साथ साथ बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बाबा को देखना। तो बाबा को जब हम देखते हैं तो बाबा से हमारा बुद्धियोग जुड़ जाता है और हमें शक्तियां मिलती रहती हैं। दूसरी विधि है कर्म करते समय ऐसा अनुभव करें कि बाप दादा मुझे देख रहे हैं, न केवल देख रहे हैं लेकिन मुझे सकार दे रहे हैं। तो इस विधि को अपना कर भी हम कर्म के साथ योगाभ्यास करते जाते हैं। अभी कर्म योग हमारा सरल होता रहे उसके लिए हमें कुछ एक बातों पर ध्यान देना जरूरी है, अभ्यास करते रहना जरूरी है। तो मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली युक्ति, कर्म योगी बनने के लिए कर्म करते समय हमें कर्म कॉन्शियस नहीं बनना है, रोल कॉन्शियस नहीं बनना है, लेकिन सोल कॉन्शियस बनना है, अर्थात आत्मा का अभ्यास करते रहना है। गुप्त ही गुप्त हम स्वयं को आत्मा अनुभव करते रहें और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी आत्मिक दृष्टि से देखते रहें। तो मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा हाथों से काम कर रही हूं, ऐसा अनुभव करने से हमें थकावट नहीं आएगी। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि आगे चलकर आप इतने बिजी हो जाएंगे जो आपको 4 घंटे भी आराम करने के लिए नहीं मिलेगा, इतने आप बिजी हो जाएंगे। उस समय केवल 4 मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास करके हमें ऐसा अनुभव होगा कि मैंने 4 घंटे आराम किया है। मुझे याद है प्रकाश मणि दादी जी के संदर्भ में एक बात आपको बताता हूं। बहुत पुरानी बात है, लगभग 82-83 की बात है। उन दिनों में बाबा हफ्ते में दो बार आते थे। जो भी मधुबन में आता था बाबा को दो बार मिलता था, और जब बाबा परमधाम वापस जाते थे तो दादी जी बाबा को विदाई देने के लिए आती थी। लेकिन एक बार बड़ा ग्रुप आने के कारण दादी बहुत व्यस्त रही और बुखार आने के कारण बाबा के पास विदाई देने के लिए नहीं जा सके। तो जब बाबा दूसरी बार आए तो बाबा ने दादी जी को बुलाया और एक बहुत सुंदर बात कही कि देखो बच्ची, जितनी आप बिजी अभी हैं उससे कई गुना बिजी आने वाले समय में होगी। एक युक्ति को आपको अपनाना है। जैसे अभी एक ग्रुप आपको मिलके जा रहा है, कानपुर का ग्रुप मिलके जा रहा है और लखनऊ का ग्रुप मिलने आ रहा है, इसमें कुछ एक सेकंड की गैप जरूर होगी। उस गैप में आप अपने को अशरीरीपन का इंजेक्शन दो। दो घड़ी के लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, उसके कारण आपको थकावट नहीं आएगी। तो दादी जी ने उस युक्ति को अपनाया और दादी जी बुखार से मुक्त हो गई। दूसरी बात, कर्म योगी बनने के लिए कर्म करते समय हमें साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहना जरूरी है। जब तक साक्षी दृष्टा नहीं बनते हैं तब तक बाबा को साथी अनुभव नहीं कर सकते हैं। जितना साक्षी उतना साथी बाबा को अनुभव कर सकते हैं। जैसे शिव बाबा परम धाम में बैठकर, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में बैठकर इस साकारी दुनिया के ड्रामा को, नाटक को साक्षी होकर देखते हैं, बिल्कुल न्यारे प्यारे रहते हैं, ऐसे हमें भी साक्षी होकर अपने रोल को, अनेक आत्माओं के रोल को और इस ड्रामा को देखने का अभ्यास करना जरूरी है। तो स्वतः ही न्यारे प्यारे अनुभव करेंगे और बाबा की याद हमें सहज होती रहेगी। इसके लिए अमृत वेले दृढ़ संकल्प करना है कि आज मुझे सारे दिन भर में साक्षी दृष्टा बनकर बहुत अच्छी तरह से बाबा को साथी अनुभव करना है और योग का चार्ट बढ़ाना है, तो आपको उसमें सफलता मिलती रहेगी। तीसरी युक्ति है, कर्म योगी बनने के लिए जिम्मेदारी का बोझ से हमें हल्के रहना है। जो भी हमारी जिम्मेदारी होती है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, तो जिम्मेदारी के बोझ को हमें बाबा के कंधे पर रख देना है और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है। क्योंकि हलकी अर्थात है लकी, जो आत्मा हल्की रहती है वो आत्मा उड़ती रहती है और बाबा की याद से बहुत अविनाशी कमाई करती रहती है और अपने भाग्य के सितारे को चमकाती रहती है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी का बोझ बाबा को दे देना है और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है। मुझे प्रकाश मणि दादी जी के साथ 30 वर्षों तक मधुबन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उस दौरान मैं दादी जी को देखता था और दादी जी के जीवन से मैंने बहुत बातें सीखी। एक बार मैं दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था तो दादी जी से प्रश्न पूछा कि दादी जी, आप इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेदारी को संभाल रही हैं, इतने 6-7 हजार सेवा केंद्र हैं, उसकी जिम्मेदारी भी आप संभाल रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए भी आप सदा लाइट रहती हैं, इसका गुह्य राज क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो दादी जी ने बताया था कि देखो भैया, सबसे पहली बात, मैं स्वयं को निमित्त समझती हूँ, निमित्त अर्थात इंस्ट्रूमेंट समझती हूँ। मैं कुछ नहीं करती हूँ, करावनहार बाबा है, बुद्धि रूपी रस्सी उनके हाथ में है, जैसे बाबा मेरे से सेवा कराते हैं मैं करती रहती हूँ, निमित्त समझती हूँ। दूसरी बात, मैं एक कंधे पर शिव बाबा को और दूसरे कंधे पर फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को, अर्थात दुनिया के सबसे बड़े जो फोर्सेस हैं उनको अनुभव करती हूँ, उसके कारण जो भी समस्या आती है, जो भी विघ्न आता है, उनकी मदद से वो सहज ही पार हो जाता है, इसलिए मैं सदा लाइट रहती हूँ। तो हमें भी इस युक्ति को अपनाना है, अपनी जिम्मेदारी का बोझ बाबा को देना है। लेकिन क्या होता है, बाबा को हम जिम्मेदारी दे देते हैं लेकिन पुनः उसको वापस ले लेते हैं। क्यों भाई? हमें थोड़ा संशय आता है कि पता नहीं बाबा मुझे मदद करेंगे या नहीं, पता नहीं ये मेरा कार्य सफल होगा या नहीं। इस संशय के कारण हमें वो जिम्मेदारी वापस लेने की आदत हो चुकी है। तो हमें निश्चिंत रहना है बाबा को जिम्मेदारी देकर। चौथी बात है, कर्म करते समय हमें स्वमानधारी होकर रहने का अभ्यास करते रहना है, क्योंकि कर्म करते समय 3 बातों का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना होती है। पहली बात, जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है, जो कर्म साथी होते हैं उनके स्थिति का प्रभाव हमारे पर पड़ सकता है। तीसरी बात, वहाँ का जो वातावरण वायुमंडल होता है उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। अभी इन 3 बातों के प्रभाव से हमें न्यारे रहना है, तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है, सदा स्वमान में रहकर ईश्वरीय नशे का अनुभव करते जाना है। जब आत्मा पर ईश्वरीय नशे का प्रभाव होता है तो इन 3 बातों के प्रभाव से हम निर्लिप्त रहते हैं, न्यारे रहते हैं। इतना ही नहीं, माया के राज में हम बैठे हैं तो माया दुश्मन के प्रभाव से भी हम न्यारे रहते हैं और बाबा के प्यारे अनुभव करते हैं, बाबा की याद हमें बहुत सहज होती है। 5वीं बात, कर्म योगी जीवन अनुभव करने के लिए टकराव से हमें बचकर रहना है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर जब हम कर्म करते हैं, हमारे साथ में जो भी आत्माएं सेवा करती हैं, उनके हरेक के अपने अपने संस्कार होते हैं। तो संस्कारों में भिन्नता होने के कारण आपस में टकराव होने की संभावना हो सकती है। ये याद रखना है, जहाँ टकराव वहाँ स्थिति का बिखराव होता है। जिससे टकराव होता है उसके प्रति हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है और उसके कारण आत्मा की बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए टकराव से सदा बचकर रहने के लिए तीन सेवाधारियों को हमें साथ में रखना जरूरी है। वो कौन से सेवाधारी हैं? धैर्य, शांति और स्नेह। इन तीनों सेवाधारियों को साथ में रखते हैं और साथ में सहनशीलता का गहना पहनकर रखते हैं तो आपस में कभी भी टकराव नहीं हो सकता है। और कर्म के साथ बाबा की याद हमें बहुत सहज रहने लगती है। छठवीं बात है, कर्म योगी बनने के लिए जब भी हम शुरुआत कर्म की करते हैं उस समय अनुभव करना है कि मैं सूक्ष्म वतन से अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ, मैं कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। और जब हम कर्म पूरा करते हैं तो अपने सूक्ष्म वतन में वापस हमें जाना है। सारे दिन भर में हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते रहते हैं। अभी क्लास आप सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। भोजन के लिए आप बैठे हैं, ये भी कर्म है। आप आराम करने जा रहे हैं, ये भी कर्म है। तो हर कर्म करते समय हमें ये अनुभव करना है, मैं अवतरित फरिश्ता कर्म करने के लिए आया हूँ, बाद में कर्म करके वापिस जाता हूँ। इससे क्या होता है, न्यारेपन की अनुभूति हमें सहज होती है और बाबा के प्यारेपन की अनुभूति होने लगती है। फरिश्ता अर्थात ईश्वरीय गुणों से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय नशे से संपन्न, ऐसा फरिश्ता हमेशा उड़ता रहता है। उसके सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ रहते हैं, इसलिए वो कर्म क्षेत्र पर रहते हुए भी सबसे न्यारा रहता है और बाबा का प्यारा होकर रहता है। सातवीं युक्ति है, कर्म योगी बनने के लिए हमें श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाने पर ध्यान देना जरूरी है। हमारा लक्ष्य हो कि मुझे श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाना है। भक्ति मार्ग में कर्मों की खेती गाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म करे मन मेरे, जैसे कर्म करे मन मेरे वैसे ही बैल बनेंगे तेरे। जो हम वर्तमान समय कर्म करते हैं वही भविष्य में संस्कार के रूप में हमारे साथ चलते हैं। इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाना है, ये बुद्धि में रहता है तो योग युक्त कर्म करने पर हम एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं, क्योंकि बाबा की याद में जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारा श्रेष्ठ होता जाता है। इसलिए कमल आसनधारी बनकर हमें कर्म करना है। कमल आसनधारी होकर कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों में दिव्यता आती रहती है और हमारे दिव्य कर्मों को दूसरे देखकर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा लेते हैं, जिसके कारण हमें दुआएं मिलती हैं और दुआओं के कारण ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने की क्षमता हमारी और भी बढ़ती जाती है और श्रेष्ठ कर्मों का खाता श्रेष्ठ संस्कार के रूप में हमारे साथ चलता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं हमारे साथ कुछ भी नहीं चलता है। जो हमने कर्म श्रेष्ठ किए हैं, जिसको पुण्य कर्म कह सकते हैं, वो खाता हमारे साथ चलता है और उसके आधार पर हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। दूसरी युक्ति है, कर्म योगी बनने के लिए नवी युक्ति है, इजी होकर कर्म करते रहे। जितना बिजी उतना इजी अनुभव करते रहें। इस कंप्यूटर एज में ऐसा हरेक के मन में लगता है, छोटे से लेकर बड़े के मन में एक ही बात फिट की हुई है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो कर्म करते समय मैं बहुत बिजी हूँ, ये पत्थर अगर मन बुद्धि के ऊपर हम रख देते हैं, मन और बुद्धि बोझिल होती है, तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दक्षता और कार्य करने की कुशलता धीरे धीरे घटने लगती है और कर्म से योग भी न्यारा हो जाता है। बाबा ने कहा है, जब आप कर्म क्षेत्र पर जाते हो तो योग को किनारे रख देते हो, लेकिन अभी हमें ऐसा अनुभव करना है कि कर्म के साथ साथ मेरा योगाभ्यास भी चल रहा है। तो इसलिए इजी रहना सीखे। इजी रहना माना सरल नेचर को अपनाना। सरलता को अपनाने से हमारे कर्म भी सरल होते जाते हैं और बाबा से योग भी हमारा सहज लगता रहता है। इसलिए एक स्लोगन हमारा पक्का हो, टेक इट इजी, टेक इट इजी। कोई भी कर्म को हमें इजी रीति से लेना है। अभी दसवीं बात है, कर्म योगी बनने के लिए, लेकिन आप एक बात ध्यान रखो कि जितना बिजी उतना इजी रहने की कला मेरे पास हो। एक बार ओम शांति भवन में बाप दादा विदेशी भाई बहनों के साथ मिल रहे थे, मुरली पूरी हो गई, उसके बाद बच्चों से मिल रहे थे, तो बाबा ने बच्चों से कहा, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। तो एक विदेशी भाई खड़े होकर उन्होंने प्रश्न पूछा, बाबा हम लौकिक जिम्मेदारी भी संभालते हैं, जॉब करते हैं और बाबा के सेवा केंद्र की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, सारा दिन भर घोड़े की तरह भागना पड़ता है और थक जाते हैं और अमृत वेले जैसे योगाभ्यास के लिए बैठते हैं तो माया को नमस्कार करते ही रहते हैं, माया को सैल्यूट मारते ही रहते हैं, जुट के खाते ही रहते हैं। बाबा क्या करें? तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, देखो इस दुनिया में सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा। उनसे बढ़कर बिजी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सबसे ज्यादा बिजी रहकर, सबसे ज्यादा इजी रहकर बाबा कर्म योगी सैंपल बनकर दिखाया। वो आपका बाप है, किसी और का नहीं। अगर आपका बाप कर्म योगी नंबर वन सैंपल बन सकता है तो आप नहीं बन सकते हैं? तो सुनकर उसने लंबी सांस ली, हाँ बन तो सकता है, क्योंकि ये केवल प्रैक्टिकल हवा की बातें हम किसी को नहीं बताते हैं। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल के रूप में उदाहरण मूर्त हैं। केवल हमें बाबा को फॉलो करना है, बाबा के पद चिन्हों पर कदम रखते जाना है। तो दसवीं बात है, कर्म योगी बनने के लिए दिव्य गुणों का दान करने का लक्ष्य रखना है। देखो दुनिया में जो लौकिक लोग होते हैं, कर्म क्षेत्र पर जाने के पहले अपने को बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, मेकअप करते हैं, फिर सेवा क्षेत्र में जाते हैं। तो ऐसे हमें भी दिव्य गुणों के आभूषणों से स्वयं का श्रृंगार करना है और बाद में ही कर्म क्षेत्र में उतरना है। तो हम दिव्य गुणों का दान दे सकते हैं। मुझे याद है मैं पहली बार मधुबन में 1976 में सेवाधारी बनकर आया था। तो हम 60 सेवाधारी बाबा से मेडिटेशन हॉल में पर्सनली मिल रहे थे। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात हमें बताई थी, देखो समय अभी थोड़ा है कम, इसलिए एक ही साथ ट्रिपल सेवा करते चलो। अभी मधुबन में ट्रिपल सेवा कौन सी करेंगे भाई? एक तो कर्मणा सेवा, दूसरी मनसा सेवा, अब तीसरी कौन सी सेवा करेंगे? यहाँ तो सारे ज्ञानी हैं, किसको ज्ञान हम देंगे? तो दिव्य गुणों से सुशोभित चेहरे के द्वारा दिव्य गुणों का दान देने की सेवा हम ज्ञानियों की कर सकते हैं। तो इसलिए ये लक्ष्य अगर हमारा होता है तो हमें कर्म योगी बनने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। हम मधुबन निवासी 87 में बाबा से मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा था, मधुबन वासी, मधुबन में क्या सेवा करते हो? बहुत साधारण सेवा करते हो, भोजन पकाना है, टोली बनाना है, झाड़ू लगाना है, कपड़े धोना है, ये सारी सिंपल सेवा है, बहुत ही साधारण सेवा आप यहाँ करते हो। लेकिन कोई अगर आपको खिड़की से देखे, दरवाजे से देखे, तो ऐसा अनुभव करें कि ये होनहार फरिश्ते हैं, होनहार ये देवताएं, ये कर्म कितने साधारण कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी महान विभूतियां हैं, ऐसा वो अनुभव करते रहे। उसके लिए आवश्यक है कि कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, क्योंकि ये सिद्धांत है जो कर्म करते समय हमारी आंतरिक स्थिति होती है। कोई हमें देखता है तो देखने वाले के मानस पटल पर हमारी स्थिति का रिफ्लेक्शन होता है, उसी अनुसार वो हमें अनुभव करता है। बहुत सुंदर उदाहरण बाबा ब्रह्मा जी का है। एक बार ब्रह्मा बाबा मधुबन में जो मेडिटेशन हॉल है वहाँ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर दोपहर को 2 बजे निकर और बनियन पहनकर गोबर के गोले बना रहे थे। सभी आराम कर रहे थे, बाबा अकेले सेवा कर रहे थे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति पांडव भवन के गेट से अंदर आया और सोचने लगा, इस संस्था का मुखिया कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। चारों तरफ देखता है, कोई नजर नहीं आता है, लेकिन चलो वो पहाड़ी पर एक कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उनसे पूछते हैं। तो व्यक्ति चलते 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 बाबा के पास गया और बाबा ने जैसे ही उसके तरफ देखा, उसको बाबा के फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। जैसे फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, वो बाबा के पैर पकड़ने लगा। ये व्यक्ति कितना साधारण कर्म कर रही है, लेकिन ये बहुत महान विभूति है, ऐसा साक्षात्कार उसने किया। तो ऐसे ही हमें कर्म साधारण करना है, लेकिन स्थिति हमारी असाधारण अनुभव करना है। तो ऐसे कर्म योगी बनते बनते हमारा जीवन खुशनुमा होते रहता है, क्योंकि कर्म के द्वारा हमारी कमाई हो रही है और दूसरा योग के द्वारा भी कमाई हो रही है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हम बहुत अच्छी तरह से डबल कमाई करते हैं तो खुशी में दौड़ते रहना है। एक युक्ति और मैं आपको बताना चाहूंगा, कर्म योगी बनने के लिए कर्म के फल की आंच न रखें। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये इंसान यही है गीता का ज्ञान। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा फल की आंच मत रखो। जैसे छोटा बच्चा कर्म करता है और अपने बाप को बताकर निश्चिंत होता है, कोई भी काम करता है, तो ऐसे हमें कर्म करते जाना है, बाबा को बताना है और स्वयं को एकदम निश्चिंत अनुभव करना है। तो जब हम बेफिक्र अनुभव करते हैं तो बाबा की याद हमें बहुत अच्छी रहती है। इसलिए ऐसे कर्म योगी जीवन खुशनुमा जीवन अनुभव करना है। डबल कमाई हो रही है, इतनी अविनाशी कमाई हो रही है, तो कमाई बहुत होती है तो खुशी हमें बहुत होती है, तो खुशनुमा जीवन हमें अनुभव होने लगता है। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं, चंद घड़ियों के लिए। हाँ भाई, करना चाहते हैं? बोलो करना चाहते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी थोड़ा सभी चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे 4 बजे अमृत वेले योग करने के लिए बैठे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हो, जग मग रही हो, मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मौज आत्म ज्योति के चहुओ बहुत सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ, कर्म योगी आत्म ज्योति हूँ, आँखों द्वारा देख रही हूँ और बुद्धि रूपी नेत्र से शिव बाबा को देख रही हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति ईश्वरी रूपी मोमबत्ती से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार चंद्र, सूर्य, तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मौज आत्म ज्योति ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज का चमकीला ड्रेस धारण किया है। कितना सुंदर है यह फरिश्ता स्वरूप ड्रेस। ओहो, मेरे अति प्यारे अति मीठे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अथाह शक्तियों को अनुभव कर रही हूँ। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गई हूँ। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ, कितनी सुंदर न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह, कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। स्वीट साइलेंस हो, ओह मेरे प्राणों के प्राण, मेरी प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। वारे मैं, वहाँ मेरे बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, भाग्य विधाता बाप से मैं आत्मा खजाने लूट रही हूँ, शक्तियों को लूट रही हूँ और लुटा रही हूँ। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर, महा ज्योति, परम ज्योति शिव बाबा से मंगल मिलन मनाने का आनंद ले रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर विराजमान हो चुके हूँ। मोज चैतन्य आत्म ज्योति से शक्तियों की तरंगे चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन डायरेक्ट परम धाम से मौज आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति।